श्रीमान अमरेंद्र प्रभु उपस्थित हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनके श्रीमुख से हम हरि कथा सुनेंगे। तो जैसे आप जानते ही होंगे, श्रीमान अमरेंद्र प्रभु देश विदेश में जाकर कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं। तो और उनका वृंदावन के प्रति जो प्रेम है, रति है, आकर्षण है, और उनकी जो हरिनाम के प्रति जो प्रीति है, वो हमको अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देती है। तो आप उनके कथा से ही सुन पाएंगे कि राधा कृष्ण के प्रति, वृंदावन के प्रति, हरिनाम के प्रति, गुरु वैष्णव के प्रति उनका कितना आदर, सम्मान, प्रेम। परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज के प्रिय शिष्य हैं श्रीमान अमरेंद्र प्रभु, और हमें आज इतना सुंदर अवसर उपलब्ध हुआ है कि जिसमें हम उनके जो वाणी का आस्वादन आज हम कर सकते हैं। तो हम उन्हें यहाँ पर निवेदन करते हैं कि अगले कुछ एक घंटे के लिए हम जितना हो सके हम सुनने का प्रयास करें। हाँ, और उनकी उन सहकुटुंब आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके माता पिता और उनकी पत्नी और उनके कुछ मित्र परिवार यहाँ पे उपस्थित है। तो सबका हम स्वागत करते हैं साथ में तीन बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So anyone here who does not understand Hindi, because the class will be in Hindi. इकडे कोणी असं आहे का की ज्यांना हिंदी येत नाही, हात वरती करा। Is there anybody here who cannot understand Hindi? That means English speaking. Or इकडे कोणी आहे का जिकडे ज्यांना हिंदी येत नाही आहे, त्यांच्यासाठी आपण वेगळा बंदोबस्त करूया, करणार आहोत। तर नाही, सो सबको हिंदी आती है। हरे कृष्ण, या राष्ट्रभाषा की जय।
जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवदधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुन तीरवन चारी कृष्णा, यमुन तीरवन चारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी श्री राधे, जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे, जय जय शचीनंदन गौर हरि, जय शचीनंदन गौर हरि, ओ जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वृंदावन बिहारी की, शशिनंदन गौर हरि की, श्रील प्रभुपाद की, हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस संध्याकालीन बैठक में आप सबका स्वागत है। शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान हमें नेत्र इसलिए देते हैं ताकि वैष्णवों का दर्शन हो सके, और आप सबके दर्शन करके हमारे नेत्र परिपूर्ण हो गए, कृतकृत्य हो गए। अक्षणो फलम त्वदृश दर्शनम ही, शास्त्र में श्लोक है, जो श्रद्धालु वैष्णव है, भगवान के चरणों में आस्था रखते हैं और भक्ति के पथ पर अग्रसर हैं, प्रगाढ़ आस्था से आगे चल रहे हैं, ऐसे सद्मार्गीय वैष्णवों का दर्शन करना मानो नेत्रों के लिए फल प्राप्त करने के समान है। तो आप सब आए और श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर में यहाँ बहुत सुंदर तरीके से सेवा कर रहे हैं। आप सब सद वैष्णवों के दर्शन करके, आप सब से मिलकर हमारा जीवन, हमारा दिन, हमारा मानव अस्तित्व ही सफल हो गया। तो इसलिए कुछ कहने से पूर्व आप सबके चरणों में बारंबार झुक झुक कर मैं नमन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और वाचस्खलन के कारण, वाणी से अशुद्धि के कारण जो भी त्रुटियां हो, गलतियां हो, आप सारग्रही भाव से हमें क्षमा कर दें। और यदि कोई गुरु प्रदत्त भगवान की असीम अनुकंपा से यदि ग्रहण करने योग्य कोई अच्छे बात प्रभु के विषय में लीला अनुकूल यदि कोई बात आ जाए तो आप सब उसको प्रसाद ही मानकर, परंपरा के दृष्टिकोण से प्रसाद मानकर, उन्हीं का उच्चिष्ट मानकर आप ग्रहण करें, ये मेरी अभिलाषा है। यही कहते कहते आप सबसे प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद और प्रार्थना से सही समय पर, सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से भगवान की स्तुति हो सके, हम सबके अंतकरण का शुद्धिकरण हो, हमारे कर्ण इंद्रियों को संतोष प्रदान हो और हमारा हृदय प्रभु के चरणों में जन्म जन्मांतर प्रेममय सेवा में तल्लीन रहे, ये एकमात्र हमारी इच्छा है। ये कहते कहते आप सबके चरणों में झुक रहा हूं, वांछा कल्पतरु। हमारे वृंदावन बिहारी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करके मानो ऐसा लगता है कि कोई प्यासा व्यक्ति कई सालों से मरुभूमि में, डेजर्ट में, जहां जल ना मिले, बेचारा घूम घूम कर, रेंग रेंग कर चलता है, जलहीन अवस्था से तड़प रहा है और अंततो गत्वा यदि उसको एक तालाब मिल जाए जहां बहुत ही सुंदर, शीतल, सुमधुर जल मिले, रस भरा जल मिले, कितना संतोष होता है, कितना आनंद होता है। मुझे लग रहा है कि आप सबके नेत्रों को उतना ही संतोष मिलता होगा यहाँ के वृंदावन बिहारी का दर्शन करके। दिन प्रतिदिन मानो लगता है कि उनकी सौंदर्यता बढ़ती जा रही है, वर्धमान है, रंग बिरंगे वस्त्रों में, और कितने सुंदर तरीके से त्रिभंग शरीर है उनका। अन्य अवतार देखिए सीधे खड़े रहते हैं, हमारे ठाकुर ऐसे टेढ़े खड़े हैं, इसलिए वृंदावन में उनको कहते हैं बांके बिहारी। बांक माने जो तीन स्थानों में, विशेष करके चरणों में, कमर में और गर्दन में लटक के खड़े हैं बहुत सुंदर तरीके से, मोड़ेन पण वाकणार नहीं मराठीत म्हटलं की मोडेन पण वाकणार नाही, खूप सुंदर, त्रिभंग देह सुंदरम इतनी सुंदर तरीके से उनकी रूप माधुरी है। शास्त्र में जब भगवान के रूप माधुरी का वर्णन आता है, ऐसे सुंदर सुंदर उपमा, उदाहरण, समानता पाई जाती है। उनके चंचल नेत्र,
ये कम हो गया,
एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक। जब भगवान के चंचल नेत्रों का वर्णन आता है, वैसे हमारे वृंदावन विहारी के नेत्र तो बहुत ही सुंदर हैं। जो भी सामने खड़े रहते हैं मानो ऐसे, वो तो हैं रस भरे सुंदरता के मूर्तिमान स्वरूप, और उनके नेत्र भी मानो ऐसे लगते हैं जैसे कि अब रोएंगे, जल से भरे हुए, कृपा सिंधु भये वच, और इतने प्रेम से अपने भक्तों के समाज को देख रहे हैं। हम कई बार मंदिर जाते हैं तो इस भाव से जाते हैं कि हम जाकर देखेंगे कि भगवान आज कैसे दिख रहे हैं, पर वास्तविक दृष्टिकोण तो ये है कि हम जाते हैं ताकि ठाकुर जी अपने सुंदर नेत्रों से हमें देखे। ऐसा नहीं कि हम देखने योग्य हैं, पर इस भाव से देखे कि हे वृंदावन बिहारी देख रहे हैं कि मेरे भक्त आए हैं, और केवल नेत्रों से हमारा उद्धार करते हैं। जब कोई चिकित्सालय जाता है वैद्यराज के पास, इस भाव से नहीं जाता कि मैं जाके देखूंगा कि वैद्यराज की विद्या शक्ति कितनी प्रबल है, वो इसलिए जाता है ताकि वैद्यराज उनको देख सके और नाड़ी परीक्षण करके उनके शरीर के दृष्टिकोण से देखे कि कितना रोगी ग्रस्त है। ये भाव से जाता है, और इसी भाव से हमें मंदिर भी आना है, क्योंकि ये भी एक चिकित्सालय है। हम इस भाव से आते हैं कि ठाकुर जी यहां वैद्यराज नहीं है, यहां रसराज है, जो धारण किए गिरिराज को ब्रजराज सुत, वृंदावन के राजा नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण यहां खड़े हैं। हमें इस भाव से आना है कि भगवान अपने चंचल नेत्र से मुझे देखेंगे तो मेरा उद्धार होगा। जब भगवान के मित्र यमुना के जल, दूषित जल को पान करके वहां जब कालिया वास कर रहा था यमुना के जल में, उसको कालिया ने अपने वास से अमृतमय नहीं बनाया, परंतु अमृतमय जल को दूषित बनाया, और इस कारणवश जब भगवान के सखागण मित्रगण उस यमुना के जलपान किए, तब मानो अकस्मात सब सचेत से अचेत हो गए, गिर गए, जिसको कहते हैं बेहोश होना। भगवान ने उनको पुनर अपने पहले अवस्था में पुनर्स्थापित कैसे किया, केवल दृष्टिपात से। चंचल नेत्रों से प्रभु ने कृपा दृष्टिपूर्ण भाव से देखा, और देखने मात्र से अपने सखाओं का उद्धार हुआ। उनके शरीर में जो विष भरा था, प्रभु ने अमृतमय नेत्रों से उस विष को बाहर किया। जब भगवान के रूप माधुरी का वर्णन आता है तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, असम ऊर्ध्व रूपश्री विस्मापित चराचरम, कि हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री वृंदावन बिहारी इतने सुंदर हैं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, इनसे बढ़कर तो दूर इनके समान भी और कोई सुंदर नहीं, और विस्मापित चराचरम, जो जीवित हैं वो मृत अवस्था को प्राप्त करते हैं केवल देखने मात्र से, अथवा चित्र के समान खड़े रहते हैं। भला इतनी सुंदरता कोई व्यक्ति में हो सकती है? विधाता ब्रह्मा जी ने ऐसी कौन सी आकृति बनाई? कई बार लोग कहते हैं ना कि भगवान निराकार हैं। अरे निराकार नहीं है, नराकार हैं। निराकृति नहीं है, नराकृति है। ऐसे सुंदर नराकार में भगवान लीला विलास करते हैं, वृंदावन में विहार करते हैं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, इनको देखने के बाद अब कुछ बचा नहीं, इतने सुंदर। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, यदि घर में बैठकर चुटकुले बोलने और सुनने में यदि बहुत आनंद है तो कृपया करके वृंदावन कभी मत जाइएगा, और जाए तो भी यमुना के तट में मत जाइएगा, और गए तो भी केशी घाट मत जाइएगा, और वहां गए तो भी बहुत सुंदर कदंब के वृक्ष के छत्र छाया में, पूर्णिमा के रात में, यमुना के तट में, त्रिभंग देह सुंदरम ललित मनमोहन, रसिक शेखर, धीरो धीरो दत्त, धीर ललित नायक, श्याम सुंदर, वृंदावन बिहारी का कभी गलती से भी दर्शन मत करना। अभी मुझे बताइए, यदि दर्शन ना करना होता तो इतना विस्तार क्यों किया, इतना वर्णन क्यों किया? क्यों कहें कि वृंदावन मत जाना, छोड़ देते, फिर जाओ तो भी फिर जमुना के तट मत जाना, केशी घाट मत जाना, और जाओ तो भी कदंब के वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात में चंद्रिका चंद्रिका से भासित पूर्ण रूप त्रिभंग ललित सुंदर रसिक शेखर राधा रमन वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर का कभी भी मनमोहक दर्शन मत करना। इसका कहने का आशय ये है, हे बद्ध जीव, घर गृहस्थी में बैठकर हास परिहास के इस प्रवृत्ति को छोड़ो, और यदि भागना हो तो भागो वृंदावन की ओर। और जो वृंदावन की ओर नहीं भाग पा रहे हैं, कम से कम वृंदावन बिहारी की ओर तो भागो। परम पूज्यपाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज ने उन कृष्ण को जो वृंदावन में विहार करते हैं, प्रेम के पाश में बांध कर घसीट घसीट कर यहां तक ले आए। घर बैठे बैठे यदि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी का दर्शन करने का सौभाग्य हो, और जीव घर में बैठकर फिर भी चुटकुले सुने, ये दुर्भाग्य है। ये ऐसा है कि बाहर सूर्योदय हो रहा है और उल्लू अपने कमरे में बैठा है। उल्लू माने व्यक्ति नहीं, एक ही पत्थर से दो निशान हो गए। भगवान बहुत सुंदर है, बहुत अत्यधिक सुंदर। जब उनके मुख का वर्णन आता है तो कमल की उपमा दी जाती है। उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान। उनका मुख कैसा है, कमल के समान। उनके हाथ कैसे हैं, कमल के समान। उनके चरण कैसे हैं, कमल समान। और उनका नाभि भी देखो तो पद्म समान, कमल समान। ऐसे महानुभाव श्री श्याम सुंदर, श्री वृंदावन बिहारी एक ही रूप में आठ आठ कमल लेकर घूम रहे हैं। दो हाथ के और दो पैर के, दो नेत्र के, एक मुख कमल और एक नाभि। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभो, आपको मैं क्या वन से निकाले हुए कमल को गूंथ कर माला कैसे अर्पित करूं? आप चलते फिरते कमल के वन हैं और इतने सुगंधित वन हैं कि भ्रमर रूपी भवरे रूपी शुद्ध वैष्णव नाम के गूंज को गाते हुए आपके रूप माधुरी रूपी कमल वन से आकृष्ट होकर उसमें मकरंद रूपी मधु रूपी आपकी सुंदरता को चखने के लिए सदा सर्वदा ललायित है। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आपके चरण रूपी कमल में मकरंद रूपी सेवा इस भवरे रूपी भ्रमर रूपी व्यक्ति को सदा सर्वदा देते रहे। तो मुख की उपमा किससे की गई, चेहरे की उपमा किससे की गई? कमल से। बहुत सुंदर कमल। कोई भी कमल हो तो उसमें कई सारे अंश हैं। एक तो पंखुड़ियां, पेटल्स, बहुत सुकोमल, बहुत ही सुंदर। भगवान के मुख कमल की त्वचा भी बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर कि शास्त्र में वर्णन आया है, जब हमारे वृंदावन बिहारी रसिक शेखर श्याम सुंदर वंशी वादन करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग रागों से और अनुरागों से हृदय में स्थित अनुराग से, अधरोष्ठ में स्थित रागों से और कंठ में स्थित रागों से बहुत सुंदर समन्वय करके जब वंशी वादन करके पूरे वृंदावन को सफल बना देते हैं, वर्णन आता है कई बार जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभु वंशी वादन करते हैं उस वृक्ष को भी लगता है कि हे प्रभु, आप इतनी सुंदर तरीके से वंशी वादन कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भी आपको कोई भेंट दें, और मानो शायद संभव है कि वृक्ष ने गीता सुनी होगी और सुना होगा कि पूरे गीता में एकमात्र श्लोक है जो हम अर्पण कर सकते हैं, वो है पत्रम पुष्पम। बाकी अन्य श्लोक तो मनुष्य जाति ले गई, पर हमारे वृक्ष जाति के लिए मानो एक श्लोक रख दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्योंकि जब मानव जाति भी लेती है तो वृक्ष से लेकर प्रभु को अर्पित करती है। तो मानो वृक्ष ने सोचा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार पदार्थ हैं जो हम पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित कर सकते हैं प्रेम भाव भावित। परंतु उसमें भी जो पहला है वो है पत्रम। वैसे तो गीता में जब प्रभु पत्र कहते हैं, प्रभु के हृदय का कहने का आशय पत्र माने तुलसी का पत्ता है। एक तुलसी के पत्ते में इतना प्रबल या इतनी प्रबल शक्ति है कि असंभव को संभव कर सकती है तुलसी, असंभव को संभव। अभी आप सोच विचार कीजिए, जो लाला मैया यशोदा के भाव से परिपूर्ण व्यंजन पदार्थ पाते हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव और रस से भरा हुआ व्यंजन पदार्थ पाते हैं, वो वृंदावन बिहारी रसिक शेखर श्याम सुंदर झुककर आपके घर से रोटी बनाई हुई या आपने बनाए हुए समोसे प्रभु क्यों लेंगे? हम जब घर में बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो प्रभु जो मैया यशोदा और राधा रानी के भाव भावित रस परिपूर्ण व्यंजन पाते हैं, वो हमारे हाथ का भला क्यों पाएंगे? ये तो असंभव है। परंतु इसलिए हम तुलसी का पत्ता ऊपर रखते हैं क्योंकि तुलसी में ये परिपूर्ण शक्ति है, अघटन को घटन कर सकती है, असंभव को संभव कर सकती है, अनहोनी को होनी कर सकती है। हे प्रभु, मुझ जैसे पतित जीव के हाथ का पदार्थ आप नहीं पाएंगे, इसलिए तुलसी के पत्ते के बल से हम इस भोग को प्रसाद बनाएंगे। और जब तुलसी का पत्ता रखा जाता है तो हम में भाव हो ना हो, हमारे पदार्थ में रस हो ना हो, जहां तुलसी बैठती है वहां प्रभु के चरण तो आने हैं, क्योंकि वो गोविंद चरण प्रिया है, वो स्वयं प्रभु के चरणों में वास करती है। चरण माने प्रभु। जब कोई साधु आते तो हम कहते हैं कृपया घर में आपके चरण पधारे, उसका यह अर्थ नहीं कि वो काटकर चरण भेज देंगे, घर में रहेंगे और केवल चरण भेज देंगे, ना, आप अपने श्री चरण पधारे इसका अर्थ है कि आप पूर्ण रूप से विराजे। तो गोविंद चरण प्रिय का अभिप्राय यह है कि तुलसी केवल प्रभु के चरण में वास नहीं करती, जहां तुलसी वास करती है प्रभु के आकर्षक रूप को आकृष्ट करने की शक्ति सामर्थ्य रखती है। तो जब हम भोग में तुलसी अर्पण करते हैं, वो घसीट के अपने शक्ति, अपने वस्तु शक्ति से श्याम सुंदर को खींचती है, और जो श्याम सुंदर यशोदा रानी और राधा रानी के हाथ से पाते हैं वो हमारे घर में आकर ये संभव है। इसीलिए हम कंठ में तुलसी धारण करते हैं, क्योंकि हम कौन हैं? भोगी हैं। हम बनना क्या चाहते हैं? प्रसाद। हम स्वयं ऊपर से नीचे, सिर से नख तक हम भोगी हैं। जन्म जन्मांतर केवल भोग अवस्था में लगे हैं। हमको कैसे प्रभु, किस बल पर हमें प्रभु अपनाएंगे? कंठ में तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को प्रभु पूर्ण रूप से अपने सेवा में नियुक्त करते हैं, क्योंकि हम भोग हैं। जिस प्रकार हम घर में भोग व्यंजन तैयार करते हैं, हम उसी प्रकार सिर से नख तक हम भोग हैं। इंद्रियों से केवल भोग वृत्ति चलती है, परंतु तुलसी जिनके कंठ को एक बार धर लेती है, उस व्यक्ति के संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गला घोट कर खत्म कर देती है। जिस प्रकार कोई गला धर दे तो जीवन खत्म, जिनके कंठ में तुलसी वास करती है वो गला घोट देती है उस व्यक्ति के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को। और वो व्यक्ति अब भोगी भी क्यों ना हो, उस तुलसी के आकर्षक शक्ति से प्रभु के आकर्षक मनमोहक रूप को आकृष्ट कर प्रभु के कृपा दृष्टि को प्राप्त करता है और वो भोगी प्रसाद रूपी भक्त बन जाता है। और जिनके कंठ में तुलसी ना हो, तो हमारे शास्त्र में दोनों प्रकार की बातें कही गई, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। जैसे तुलसी धारण करने वाले तो क्या फायदा, और तुलसी न धारण करे तो क्या नुकसान, दोनों बातें। यन कंठे तुलसी नास्ति तेदरा मूढ़ मानसा श्वान विष्ठम च तस्यानम जलम च मदिरासम। यन कंठे तुलसी नास्ति, जिनके कंठ पे तुलसी वास ना करे, कंठी ना हो, ते नरा मूढ़ मानसा, मानव जाति में वो सबसे निकृष्ट हैं। और श्वान विष्ठम च तस्यानम, प्रत्येक अन्न जो ग्रहण करते हैं उनको पाप लगता है। हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, श्वान विष्ट का अर्थ आप भली भांति जानते हैं। श्वान विष्ठम च तस्यानम, प्रत्येक अन्न के कण को ग्रहण करने पर पाप लगता है। और जलम च मदिरासमम, प्रत्येक घूट पानी पीने पर शराब पीने का पाप लगता है, जिनके कंठ में तुलसी ना हो। और यदि तुलसी हो तो, क्योंकि हर बात सकारात्मक नकारात्मक सकारात्मक करके छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक करके छोड़ दे तो भक्त डर जाएंगे, जिनके कंठ में कंठी ना हो तो फिर। पर उसके बाद ये भी है कि जिनके कंठ में कंठी है उनका क्या, सिकते सिकते तु लभते अश्वमेध फलम मुने, स्नान काले तु यस्यांगे वर्तते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानम तद भवते न तु संशया। कंठी धारण करके जो व्यक्ति स्नान करता है, जो जल कंठी को स्पर्श करके शरीर को पूर्ण रूप से अभिषिक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड में सभी तीर्थों में अपने शरीर को अप्लावित करने का फल मिलता है। आपको गंगा जमुना सरस्वती जाने की आवश्यकता नहीं, आप जहां नहा रहे हैं गंगा यमुना सप्त नदी वहां बहेगी, तुलसी कंठ में जिनके हो उनके लिए। कोई कहेगा हम इतने बार नाते नहीं, कलियुग विचित्र है। कलिकाल के चरणों में प्रणाम, परंतु तीन बार अन्न तो पाएंगे, नहीं पाते तो पाइए, कंठी कंठ में तुलसी धारण करके प्रसाद पाइए। सिकते सिकते तू लभते अश्वमेध फलम मुने, प्रसाद पाने पर प्रत्येक कण पाने पर आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, केवल भोजन ताली से, थाली से प्रसाद पा रहे हैं वो वहीं आपका यज्ञ बन रहा है, हमारे बल पे नहीं तुलसी के बल पे। तो हम ये कह रहे थे कि शास्त्र में वर्णन है कि श्याम सुंदर जब एक बार हमारे वृंदावन बिहारी एक बार वृक्ष के छाया में खड़े होकर जब बहुत सुंदर वंशी वादन कर रहे थे, तो इससे आकृष्ट होकर कृतज्ञता भाव से वृक्ष ने मानो एक छोटा सा पत्ता, तुलसी का पत्ता तो है नहीं पर साधारण अपने शरीर के श्री अंग से एक पत्ता मानो न्योछावर किया, और वो पत्ता ऐसे हवे के झोंके से झुकते हुए आते 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 प्रभु के उस श्री अंग को स्पर्श हुआ जिस हाथ से वंशी वादन हो रहा था, मानो वो पत्ता आकर यहां चिपक गया। और प्रभु ने वंशी वादन करने के बाद जब वो पत्ता निकाली, तो उस पत्ते में जो आकृति थी, जिस प्रकार की आकृति थी, वही चिन्ह वही निशान प्रभु के सुकोमल श्री अंग में स्थापित हुआ, अंकित हुआ। इतना सुंदर सुकोमल शरीर, तो कितना सुकोमल चेहरा होगा, और इतना सुकोमल चेहरा तो कितना सुकोमल हृदय होगा। हम उनका भजन करते हैं जो माखन तस्करी करते हैं, जो माखन पाते हैं, और जैसा अन्न वैसा मन। प्रभु केवल माखन मिश्री पाते हैं तो उनका हृदय भी माखन की तरह थोड़े गर्मी में द्रवित होता है। जब भक्त थोड़े गर्मी, भक्ति के तीव्र थोड़े, चिंगारियों की बात कर रहे हैं, दावग्नि की नहीं, थोड़े तीव्र भक्ति से जब प्रभु को पुकारता है, उस अग्नि से प्रभु के हृदय रूपी माखन परिपूर्ण रूप से द्रवित होकर वो हृदय करुणा के सागर से बहने लगता है। और क्योंकि प्रभु मिश्री के साथ पाते हैं, उनका हृदय बहुत मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका मुख कमल ऐसा कमल है। पहली बात हम कह रहे थे कि उसकी पंखुड़ियां बहुत सुकोमल है, तो प्रभु की जो त्वचा है इतनी सुकोमल, अगर पत्ता शरीर में छिपने लगने पर अंकित हो जाए तो मानो मुख कमल कितना सुंदर होगा। और केवल वो ही नहीं, कमल में एक और विशेषता है, एक और वैशिष्ट्य है, वो ये है, आप कोई भी कमल देख लीजिए, उसमें बूंदे होती हैं जल की, जिसको इंग्लिश में ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। भगवान के मुख कमल में भी ऐसे छोटे छोटे बूंद पाए जाते हैं, किसके? पसीने के। भगवान का शरीर पसीने से लथपथ नहीं होता, केवल मुख कमल मानो यहां ऐसे बूंद लगती हैं, भागते हैं। यदि दूरम गत कृष्ण वनशोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे। भगवान जब वृंदावन विहार करते हैं और वृंदावन की अतुल्य शोभा देखने के लिए लालायित होकर भागते हैं और फिर थक जाते हैं, मानो बहुत सुंदर बूंद भगवान के यहाँ ललाट पर आती है पसीने के, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैया यशोदा ने दीपावली के दिन पर मानो बहुत सुंदर दीप लगाए हों चौखट पर। क्योंकि भगवान का जो मुख कमल है ये नीला कमल है, मानो ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, और दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सब चौखट पे आकर बाहर आकर दीप प्रज्वलित करते ही हैं। तो जब ये पसीने के बूंदे लगते हैं ललाट पर, ऐसा लगता है कि नील कमल रूपी ब्रह्म मुहूर्त में दीपावली के दिन परिश्रम के कारण कृष्ण के ललाट रूपी चौखट में दिए रूपी पसीने के बूंद शोभायमान है। और केवल यही नहीं, कमल में एक और वैशिष्ट्य है, वो क्या है? उसमें यह वैशिष्ट्य है कि कोई भी कमल उठाकर देख लीजिए, उसमें धूली होती है, कुछ रज होता है। भगवान भी जब बछड़ों के पीछे भागते हैं, कई बार तो बचपन में जाकर जब रेंगने की अवस्था होती है, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम राम केशव, राम और बलराम जब रेंग रहे ब्रज धूली में, तो कई बार तो बछड़े और गौ माता के पूछ पकड़कर खड़े रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, और बछड़े डर जाते हैं और भागने लगते हैं, और नाम लग गया घसीटा राम। पिछले युग में नाम था सीताराम, यहां लग गया घसीटा राम, घसीटा राम। बछड़ों ने घसीटा राम को, और यहां जो प्रभु जीव को घसीट घसीट कर गोलोक वृंदावन ले जाते हैं, उन्हीं प्रभु को उन्हीं के बछड़े घसीट घसीट कर घर ले जाते हैं। गौचारण करने के कारण, बछड़ों के साथ विहार करने के कारण, और पूरे दिन परिश्रम में लगने के कारण, जब संध्याकालीन अवस्था आती है, गोधूली का समय आता है, और पुनः लौटकर वन से पुनः लौटकर जब ग्राम की ओर, ब्रज की ओर, घर की ओर प्रस्थान करते हैं, यात्रा करके घर आते हैं, तब ऐसा वर्णन आता है, कितनी सुंदर रूप माधुरी है। संध्या काल सूर्यास्त होने के किरण तो लग ही रहे हैं शरीर में, उसके साथ साथ इंद्र नीलमणि के समान स्वाभाविक रूप कांति की द्युति है, उसके साथ साथ अब पसीने के बूंदे भी बहुत सुंदर शोभायमान है, और उसके साथ साथ अब गोधूली के जो रज हैं, ये भी मानो प्रभु के आकृष्ट रूप से आलिंगन करके चिपके हैं। आप देखते हैं जब बाहर हम सूर्योदय से सूर्यास्त जाते हैं, तो कई बार वन में हो तो पसीने तो लगते हैं, उसके कारण धूली चिपकती है शरीर से, हाँ कि ना? और तो आदि पुरुष भगवान जब वन विहार करते हैं, वृंदावन बिहारी वृंदावन विहार करते हैं, तो सूर्यास्त के कारण सूर्य किरण तो लगी रहे हैं, उनकी स्वाभाविक द्युति भी है, उसके साथ साथ पसीने के कारण शरीर और भी सुंदर लग रहा है, और उसमें गोधूली ब्रज रज से मानो अभिषिक्त होकर प्रभु का शरीर उस रज से चिपक गया। दोनों दृष्टिकोण से प्रभु रज से लग चुके और रज प्रभु से आकृष्ट होकर आलिंगन रूप से चिपक गया। और इस समय पर प्रभु की रूप कांति पूर्ण रूप से श्वेत वर्ण की लगती है। इसी कारणवश पंढरीनाथ ये शब्द प्रयोग हुआ, पांढरा अर्थ काय? श्वेत वर्ण। काकड़ा आरती संध्याकाळी नहीं प्रातःकाली ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक होता है दूध से, तो हमारे पंढरीनाथ जो सांवले वर्ण के खड़े हैं अब पूर्ण रूप से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। और यही दर्शन प्रभु संध्या काल में देते हैं ब्रज में, ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं घर के बाहर और वर्णन आता है वैसे हैं श्वेत इस सभी रंगों के कारण। अब मैया यशोदा के हृदय में वात्सल्य स्नेह, मातृ स्नेह मानो लहरों की तरह इतनी सुंदर तरीके से बह रहा है। किस भाव से? स्तनपान के भाव से, मानो दुग्ध का अभिषेक करने के भाव से। तो कृष्ण को आलिंगन करती है, छाती से लगाती है और मातृ स्नेह से दूध मानो चुचवा जाता है और प्रभु का पूरा शरीर उस दूध से अभिषिक्त तो हो जाता है, अभिषेक हो जाता है। यही है पंढरीनाथ। इतनी सुंदर रूप कांति, कमल के सभी वैशिष्ट्य हैं मुख में, सुकोमल पंखुड़ियां रूपी शरीर या मुख त्वचा, बहुत सुंदर स्वेद के बूंद हैं, बहुत सुंदर ब्रज धूली चिपकी है। इसके साथ साथ जब घर आते हैं जिस प्रकार कमल में मकरंद होता है, शहद होता है, मधु होती है, उस प्रकार अब ये मुख कमल में मधु क्या है, शहद क्या है। प्रभु आते हैं, ओ मैया यशोदा से कहते हैं मैं थक गया, मानो ये बाल्य अवस्था की जो चपलता है, प्रातःकालीन जाते जाते अब मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वो पूर्ण रूप से शांत हो गया और ठाकुर जी थक गए और आते आते कहते मैया कुछ पवाओ मुझे, मुझे सोना है, मैं थक गया। मुख कमल रूपी कमल में यदि कोई मकरंद है तो भगवान श्याम सुंदर के इस मुग्ध अवस्था में जो थकावट है यही उनकी मकरंद रूपी शहद है, यहां इस कमल रूपी मुख कमल। उसके साथ साथ मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, सबको देख रहे हैं, सभी भक्तों को निहार रहे हैं, इतना सुंदर कमल। पूरी कथा हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? भगवान के रूप माधुरी और उसमें भी विशेष करके भगवान के मुख कमल की वैशिष्ट्य। हमारे वृंदावन विहारी वृंदावन में विहार करते ही हैं, पर हरि कथा के माध्यम से हृदय रूपी वृंदावन में भी विहार करने के लिए आमंत्रण दे दीजिए, ताकि वृंदावन बिहारी केवल वहां विहार ना करे, हरि कथा के माध्यम से हमारे हृदय को भी वृंदावन बनाइए और आप हे श्याम सुंदर हे वृंदावन बिहारी यहां पर भी आकर कभी विहार कीजिए। मुख कमल रूपी कमल में एक और वैशिष्ट्य है, वो ये है कमल मकरंद से आकृष्ट करके कई सारे भ्रमर को आकृष्ट करता है। देखिए देखिए जो पुष्प में मकरंद नहीं होता भवरे महान नहीं मंडराते। ये तो यहां आप देखिए कितने प्रकार के नाना प्रकार के फूल और फल यहां पाए जाते हैं, आप नैसर्गिक दृष्टिकोण से देख लीजिए। जब फूल में मकरंद नहीं होता भौरे मंडराते हैं ना, और जब उसमें पराग लग जाता है तो किसी भौरे को भ्रमर को न्योता देने की आवश्यकता नहीं, आइए हमारे फूल में मकरंद है आइए चख लीजिए ना। अन्य सभी स्थान सभी अवतार मानो पुष्प समान है, सुंदर है ही, पर हमारे वृंदावन बिहारी रसिक शेखर कृष्ण मानो कमल हैं और उनमें मकरंद लग चुका उनके रूप माधुरी का, और इसीलिए भौरे रूपी भ्रमर रूपी केश पाश मानो बिखर का बिखरे हुए इस मुख कमल के शहद मकरंद को चकने के लिए सदा सर्वदा यहां लटकते हैं। भगवान जाते समय तो केश पाश बांध कर जाते हैं, वो पूरे दिन खेल खेल कर इतने थक जाते हैं, यहां से एक लट निकली तो उसको पीछे करते हैं, फिर यहां से लट उसको पीछे, वो दिन भर दिन खेलते खेलते इतने थक गए, अपने लीला विलास में मंत्रमुग्ध हो गए, कहां कौन से पाश की कौन सी लटकन निकली प्रभु को ज्ञात नहीं इस बात की, तो ये सब निकल जाती है। और प्रभु जब आते हैं उनका मुख कमल दिखता है पर नेत्र कमल दिखते नहीं, क्योंकि यहां तक बाल आ गए। भगवान आ रहे हैं ऐसे बीच बीच में निकाल कर देखते हैं कहां पहुंचे, वो फिर चलने लगते हैं, वो वापस यहां के बाल आकर नेत्रों को आच्छादित किए, हे लाला नेत्र बंद करो, अब अनुराग की भूमि आ चुकी, अब तुम कोई दिशा से नहीं, तुम लोभ से आगे चलोगे। हर एक कदम ब्रजवासी के प्रेम के पाश के कारण तुम चलोगे। वो बीच बीच में वापस लटकन खोलकर देखे ठाकुर, ये जो लट है केश है बाल है ये मान काले हैं घुंघराले हैं और बार बार लटकते हैं इस मुख कमल पर, मानो वही भ्रमर है। जो बार बार काले भ्रमर आते हैं मुख कमल रूपी चेहरे में, मकरंद रूपी सुंदरता को चकने के लिए बाल मानो अपने स्थान से च्युत होते हैं। संस्कृत में एक उक्ति है, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नरा इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर घिरता है तो उसका महत्व छूट जाता है। अभी कोई व्यक्ति मंत्री हो, जब तक मंत्री है सब सलाम देते हैं, एक बार मंत्री के पद से च्युत हो जाए निकल जाए तो हाथ का बैंड मांगते हैं, कौन हो तुम? अरे हम एक्स मंत्री हैं, अभी तो नहीं हो ना, चलो पॉकेट में क्या है, सब चेकिंग होती है। श्लोक का सारांश ये है, हाथ में जो नाखून है नख है जब तक हाथ से जुड़े हैं तब तक सुंदर, निकल जाए नीचे गिर जाए तो अशुद्धि। दांत जब तक मुख में है तब तक सुंदर, गिर जाए तो अशुद्धि। दंता केशा नखा नरा, केश जब तक यहां हो तो ऐसे ऐसे सवारते हैं लोग। हम जब मुंबई के लोकल ट्रेन में जाते थे, चढ़ जाएंगे ट्रेन से और ऐसे ऐसे पीछे से यहां होती है कंघी निकाल कर ऐसे, हम नहीं, हम देखे हैं लोगों को करते, हम अपने विषय में नहीं कह रहे हैं, देखे लोगों को ऐसे पीछे से कंघी निकाल कर ऐसे क्या ऐसे 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 ऐसे, फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, वो फिर होगा क्या, गाड़ी छूटेगी हवे के झोंके खाएंगे बाहर खड़े होकर, वो फिर हवा वापस, फिर अगले स्टेशन में वापस, हम देखे हैं प्रत्यक्ष। और यही केस का एक छोटा अंश आपके दाल में गिर जाए तो, अरे आप ही तो सवार रहे थे। हाथ के नाखून, मुख के दांत, सिर के केस और समाज में व्यक्ति जब अपने स्थान से गिर जाते हैं तो उनका महत्व नष्ट हो जाता है। हम कह रहे थे कि केश अपने स्थान से गिर जाए तो नष्ट होता है, पर सुंदर वृंदावन लीला है, केश अपने स्थान से गिरता है च्युत होता है अच्युत के मुख कमल के रसास्वादन करने के लिए। और जितना महत्व यहां था अब करोड़ों गुना बढ़ गया स्थान से घिरकर। सुंदर वन शोभा। अच्छा, मुख कमल के विषय में एक और वैशिष्ट्य, कमल दो प्रकार के होते हैं, एक जो दिन में खिलते हैं और एक जो रात में खिलते हैं, हम सब सुने हैं इस बात को। दिन में खिलते हैं वो किस रंग के होते हैं, लाल या गुलाबी, पिंक, और रात को खिलते हैं, विकसित होते हैं, वो कितने कौन से रंग के होते हैं? सफेद अथवा नीले। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। जो नीले कमल होते हैं इनमें भी दो प्रकार हैं, एक जो रात को खिलते हैं, एक जो दिन में खिलते हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, नील कमल हैं, मुख कमल उनके उनका उनकी त्वचा नीली है। इसका अर्थ दो अर्थ हैं, या रात को खिलेंगे या दिन को खिलेंगे। वो तो दिन को खिलते हैं ना क्योंकि गोप सखागण हैं, पर रात को खिलते हैं ना क्योंकि गोपियां हैं। तो इसका समन्वय कैसे किया जाए, इस बात को कैसे जाना जाए? हे भक्तगण, दोनों पक्ष से एक ही बात स्पष्ट है। हमारे नीलकमल रूपी प्रभु के मुख कमल यदि दिन में विकसित होते हैं वो इसलिए है क्योंकि सूर्य का एक और नाम भानु है, और ये भानु जब उष्ण काल में होता है, समर सीजन, जब वृष राशि में आ जाता है, तो यही भानु वृष भानु हो जाता है। समर सीजन, गर्मी के समय बहुत गर्मी होती है, तो उसी सूर्य को कहते हैं वृष भानु, और उसके किरण को कहते हैं वृषभानु नंदिनी। जो नील कमल दिन में खिलते हैं काव्य के दृष्टिकोण से वृषभानु नंदिनी के सामने खिलते हैं, और वृषभानु नंदिनी है राधा रानी। तो राधा रानी रूपी वृषभानु नंदिनी रूपी यहां सूर्य के सामने खिलने वाले नील कमल है मुख कमल रूपी वृंदावन बिहारी। हम कहेंगे अरे आपने तो बहुत तीक्ष्ण उदाहरण दिया, हमारी राधा रानी सुकोमला है और कोटि चंद्र सुशीतला है। इसका अर्थ यह है कि बहुत सुंदर और करुणा दृष्टि के कारण शीतलता प्रदायक है। आपने गर्मी के साथ तुलना की, अरे रुकिए जरा, वही राधा रानी का एक और नाम है चंद्रानना, जिनका मुख कमल चंद्र है। अगर हमारे ठाकुर जी का मुख कमल की उपमा कमल के साथ दी जाए तो हमारी राधा रानी के मुख कमल की उपमा चंद्र के साथ दी जाती है। और भूलिए नहीं, नील कमल स्वाभाविक चंद्र के सामने खिलता है। तो यदि दिन में खिले तो राधा रानी वृषभानु नंदिनी, और रात में खिले तो चंद्रानना राधा रानी। हमारे वृंदावन बिहारी के मुख कमल की सफलता है कि उनके सामने उनके प्रत्यक्ष पक्ष में राधा रानी विराजमान है। शास्त्र में तो वर्णन आता है, राधा संगे जदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहित। जब राधा रानी पास में खड़ी होती है तो कृष्ण बहुत सुंदर दिखते हैं, और जब राधा रानी ना हो तो वही कृष्ण सूख जाते हैं। हा राधे करके जो स्वयं आप कमल हैं स्वयं भ्रमर हो जाते हैं, और राधा रानी के चरण कमल की खोज में अन्वेषण में लग जाते हैं। तो वास्तविक सुंदरता ठाकुर में है ही, और अधिक सुंदरता, सर्वश्रेष्ठ सुंदरता तब है जब हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी उनके पक्ष में खड़ी है। और यही दोनों जब मिलकर कलिकाल में आते हैं, ये तो सोने पे सुहागा है, इसलिए सोने के वर्ण में यहां गौरचंद्र खड़े हैं। कृष्ण है कृष्णचंद्र, राधा रानी है चंद्रानना, दोनों के चंद्र को मिलाकर यहां है गौरचंद्र। तो इस प्रकार जब हम यहां दर्शन लेने आते हैं, दर्शन केवल नेत्र से नहीं होता, दर्शन हृदय से होता है। जिस प्रकार एक एक्सरे होता है, हड्डी टड्डी टूट गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे निकालते हैं, वो हम जब एक्सरे देखते हैं हम समझ नहीं पाते, पर जब वैद्यराज डॉक्टर देखते हैं वो देखते भी हैं और समझते भी हैं। हम केवल एक्सरे देखते हैं समझ नहीं पाते, परंतु जब डॉक्टर देखते हैं वो देखते भी हैं और समझते भी हैं। इसका अर्थ ये है वो डॉक्टर सीखे हैं, पढ़े हैं, अनुभवी हैं, इसलिए उनकी दृष्टि अलग है। हम पढ़े नहीं हैं, डॉक्टरी किए नहीं है, तो हम जाते हैं बस देखते हैं पर समझते नहीं। उसी प्रकार राधा वृंदावन बिहारी और यहाँ महाप्रभु ये एक्सरे समान है। हम लोग आते हैं, जनसामान्य आते हैं और नेत्रों के व्यायाम से बस देखते हैं समझते नहीं, पर शुद्ध वैष्णव यहाँ वैद्यराज के समान यहाँ आकर जब देखते हैं, नेत्रों से देखते भी हैं और हृदय से दर्शन करके समझते भी हैं, क्योंकि भक्ति करके वो अभ्यास किए हैं, अनुभवी हैं। तो जिस प्रकार डॉक्टर की दृष्टि होती है एक्सरे की ओर और जन सामान्य की नहीं, उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव जब विग्रह के सामने खड़ा रहता है वो ये नहीं सोचता कि ये पत्थर है, वो ये सोचता है कि ये मेरे स्वामी है। जिस प्रकार हमारे घर में अगर हमें बहुत राष्ट्रीय भाव हो, मेरा भारत महान, अथवा महाराष्ट्र के लिए भाव हो, मी महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र माझा, ये भाव हो, मैं राज ठाकरे साहब जैसे नहीं बोल रहा हूं, हम केवल उदाहरण दे रहे हैं, हम राज ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं, रसराज की बात कर रहे हैं। तो भाव ये है, जब राष्ट्रीय भाव हो और कोई आकर भारत का कोई चित्र दिखाए तो क्या होता है चित्र देखकर? मन में भाव उमड़ता है, और आकर कोई अब उस चित्र को फाड़ने का प्रयास करे तो क्रोध आता है। जब झंडा वंदन होता है ध्वजा, और कोई आकर सम्मान ना करे तो अपमान होता है। कोई कह सकता है अरे ये तो केवल ध्वजा है, भारत वो केवल चित्र फाड़ रहा है ना, भारत को थोड़ी खंडित कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। भारत का जो प्रेम है, भारत के लिए जो भाव है, वो ध्वजा में है, वो उस चित्र में है। जितना प्रेम भारत से हो उतना प्रेम ध्वजा से होता है। उसी प्रकार भगवान से जितना प्रेम है वही प्रेम उनके प्रतीक, उनके विग्रह, साक्षात विग्रह अथवा उनके चित्र में होता है। तो कोई अगर उस चित्र को देखे और भक्ति करे तो चित्र देखने मात्र से प्रेम उमड़ने लगता है। जिस प्रकार इस जगत में भी नव युवक नव युविका जब परस्पर प्रेम, अभी तो वैसे सब व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या है, भगवान कृपा करे, पर पहले के समाज में वो रखते थे, है ना, वो ऐसे छिपा कर, और अभी कोई उसका अपमान करे चित्र का तो, क्योंकि जितना प्रेम व्यक्ति से है उतना उस प्रतीक से है, उस चित्र से है। उसी प्रकार जितना प्रेम भगवान से है, शास्त्र पढ़ के हरि कथा सुनकर नाम जप करके जितना प्रेम, जितना भाव, जितनी आस्था प्रगाढ़ हुई है वो यहाँ उमड़ती है प्रभु के सानिध्य में। तो ये विग्रह नहीं है, ये भाव का प्रदर्शन है, ये प्रेम के मूर्ति है, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो हमें बहुत आनंद है कि आप सबके कृपा से, राधा वृंदावन बिहारी के कृपा से, श्रील राधानाथ स्वामी महाराज की कृपा से, परम पूज्यपाद श्रील प्रभुपाद की कृपा से, और गौरांग प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों की असीम कृपा से पिछले दो दिन हम आप सबके समक्ष बैठकर और आपके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए योग्य बने। वैसे योग्यता नहीं, हम कहीं और रहते हैं, वहाँ बैठकर सोचते रहते हैं वो दिन कब आएगा कि हम इको विलेज जाएंगे, वृंदावन बिहारी का दर्शन करेंगे, उस वृंदावन वन में हम विहार करेंगे, उनके लीलाओं का विहार सुनकर भक्तों के साथ। अब वो प्रत्यक्ष हमें प्राप्त हुआ आप सबकी कृपा से, तो हमने जो भी टूटी फूटी रोटी आपको पवाई पिछले एक घंटे में, अगर थोड़े शब्द उसमें जले हुए रोटी के समान हो या टूटी फूटी हो और आपके भक्ति रूपी भूख को तृप्त करने के लिए असमर्थ हो तो आप मुझे क्षमा करें। और यदि उनमें से ऐसे कोई अंश रोटी के मिले जिसको चककर रसास्वादित करकर आप संतुष्ट हुए तो आप कृपया करके आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि राधा वृंदावन बिहारी के चरणों में मति रति गति और हमारी वाणी सदा सर्वदा उन्हीं के चरणों में सदा सर्वदा विश्राम स्थली प्राप्त करें, यही हमारे मन की एकमात्र अभिलाषा है। ये कहते कहते वाणी को विराम दूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा, हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। तो एक एक कमल की एक आंशिक चर्चा हुई है, अभी 7 कमल बाकी है। मुख कमल केवल उसकी चर्चा है, उसी में ही इतना आनंद प्राप्त हुआ। तो आप सभी श्रोतागण की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि बाकी 7 कमलों के बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। ये तो रूप माधुरी कवर होगी उससे, वो भी एक अंश में। अभी बाकी सब माधुरी बाकी है, लीला माधुरी, भक्त माधुरी। तो और तो प्रभु जी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, इतनी सुंदर टूटी फूटी नहीं है, टूटी फ्रूटी है। तो 3 बार हम हरि बोल बोल के उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद श्रीमान अमरेंद्र प्रभु।
हमने तो नहीं किया ना कुछ,
नहीं वो माइक को आदत नहीं है, कुछ सुंदर होने के बाद, कुछ कोयल के बाद, कुछ कौवा कुछ बोलना जाए तो ऐसा होता है। हरे कृष्णा। तो आप आते रहिए, अपनी पूरी परिवार के साथ आते रहिए। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।